आस्था के आंसू। अंश को लगने लगा कि आज तो सबके सब घरवाले उसे अपना फेवरेट फुटबॉल बनाकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अब आगे वही दादाजी जो इस वक्त आस्था के साथ मौजूद थे उसे सांत्वना देते हुए बोले, दादाजी शांत आवाज में, हम अच्छी तरह से जानते हैं बच्चा कि इस वक्त तुम्हारा दिल पूरी तरह दर्द से भर चुका है। याद है ना तुम्हें, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी उस वक्त मैंने तुमसे एक चीज का वचन मांगा था, और मुझे लगता है कि वो वचन मांगने का समय फिर से वापस आ चुका है, क्योंकि फिर से मेरा पोता वही डेविल रूप धारण कर चुका है जो रूप उसका पहले हुआ करता था। मैं जानता हूं बच्चा, उस वक्त तुम्हारे लिए वो सब सिचुएशन नई थी, लेकिन अब तो तुम अपने पति को अच्छी तरह जानती हो। इतना ही नहीं, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, तुम्हारी नानी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भैया, सब लोग तुम्हारे साथ मौजूद हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे देवी सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज तक से बचा कर ले आई थी, तुम भी अपने पति को इस मुसीबत से बाहर निकाल लाओगी। तुम तो आज की सावित्री हो। मुझे पूरा यकीन है कि न केवल तुम अपने पति को सही सलामत एक बार फिर उसकी बुरी यादों से बाहर खींच लाओगी, बल्कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया है तुम उन्हें भी खोज निकालोगी। मुझे कहीं न कहीं इस बात का पूरा यकीन है। दादाजी की बातें याद करते हुए आस्था के दिमाग में एक बार फिर अपनी शादी की पहली रात याद आने लगी। इतना सोचते ही आस्था ने अपने सर पर हाथ मार लिया और बेमन से बुदबुदाई, कितनी मेहनत से हमने अपने खड़ूस राक्षसपति को बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन ये क्या कान्हा जी, आपने एक बार फिर से उन्हें वही पिशाच सिंघानिया बना दिया। ऐसा क्यों किया कान्हा जी? ये सोचते सोचते आस्था एक बार फिर से रोने लगी। अब तक उसकी नाक टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। तब दादाजी ने आस्था के सर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया। दादाजी शांत आवाज में, अरे आहान बेटा, एक गिलास पानी ले आओ। लेकिन जब किसी की कोई आवाज नहीं आई तो दादाजी ने तुरंत इधर उधर ध्यान से देखा, वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था। तभी उनका ध्यान थोड़ी दूरी पर खड़े सभी लोगों पर गया जो अंश को लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। दादाजी ने इशारे से आस्था को वहां देखने को कहा। आस्था ने जैसे ही ये दृश्य देखा तो अगले ही पल वो रोते रोते एकदम से हंस देती है। दादाजी हल्की मुस्कान दबाए, बेटा तुम्हें कुछ करना होगा, देखो ना सबके सब कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, तुम जाओ जाकर उन्हें थोड़ा सा संभालो। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने पलकें झपकाते हुए हामी भरी और अपने टूटे दिल के साथ उठ खड़ी हुई और जल्दी से आगे बढ़ने लगी। सबको आश्चर्य से देखते हुए उसने नामे सिर हिलाया। आस्था शिकायती लहजे में, ये आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आस्था की आवाज सुनने के बाद अगले ही पल सब आस्था की ओर ठिठक कर देखने लगे। तभी अंश ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, चलो कम से कम मेरी मम्मी तो मुझे बचाने आई, वरना ये लोग तो आज मुझे फुटबॉल बनाकर ही पास पास करते रहते, और मेरा फुटबॉल बनने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अब जैसे ही आस्था वहां आई और सबने उसकी नम आंखें देखी तो सभी कुछ शर्मिंदा से हो गए, और फिर तुरंत ही सबने अंश को वापस झूले में लिटा दिया। तब नानी माँ हड़बड़ाकर, अरे आस्था बिटिया कुछ नहीं हुआ, वो अंश बिटवा कितने दिनों से हमारे साथ नहीं था, तो हमें लगा कि हम थोड़ी देर उसे प्यार कर लें। और बेटा प्लीज अब रोना बंद करो और बिल्कुल भी परेशान मत हो, और रही बात दामाद जी की तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है? आस्था भरी हुई आवाज में, नानी माँ आपको लगता है कि अरमान जी इतनी आसानी से ठीक हो जाएंगे? आप जानती है ना पहले वो कितने ज्यादा खतरनाक थे और अब वो वापस से खतरनाक हो गए हैं, आप सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है। इतना बोलकर आस्था नम आंखों से नानी माँ को देखते हुए सिसक रही थी। अचानक नानी माँ के दिमाग में अरमान का चेहरा घूम गया, उसकी लाल आंखें, गुस्से से तिरछी नजरें और माथे पर बंदूक की नोक टिकाए खड़ा होना, ये याद आते ही नानी माँ का दर पड़ गया। नानी माँ लड़खड़ाती हुई आवाज में, एक बात बताऊं गोरी बिटिया, आज तो हमें बामाद जी से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, शुक्र है कि वक्त रहते तुम आ गई और हमारी जान बचा ली। सच में गोरी बिटिया तुम बहुत साहसी और बहादुर हो, लेकिन अब तुमने शेर के मुंह में ही हाथ डाल दिया है, तुमने दामाद जी के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है, इसका मतलब तुम जानती हो गोरी बिटिया? नानी माँ बात सुनते ही आस्था ने धीरे से हामी हुई रुआसी आवाज में कहा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमने उन पर हाथ उठाया है, और इस बात को लेकर अब तक वो हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए होंगे, क्योंकि एक बार फिर हमारा पति डेविल जो बन गया है, फिलहाल तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये बोलते बोलते अचानक आस्था फिर से रो पड़ी। आज आस्था का दिल पूरी तरह से टूटा हुआ था, उसका दिल बार बार रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सिंघानिया मेंशन की हर एक दीवार आस्था के दर्द को महसूस कर रही हो। आस्था का रोना सुनकर बाकी सभी लड़कियां भी काफी ज्यादा भावुक हो गई थीं और वो सब भी सिसकने लगी। वहीं सभी लड़के अपनी अपनी पत्नियों को इस तरह से रोते हुए देखकर वे भी काफी ज्यादा दुखी हो रहे थे। सभी के चेहरे पर मायूसी साफ छलक रही थी। तभी ध्रुव और आहान ने आकाश और सुमित की ओर इशारा किया और चुपके से बोले, भाई कुछ कीजिए, अगर इस तरह से ये सब रोती रही तो रश्मि दीदी और रौनक के साथ साथ उनके होने वाले बच्चे पर भी इसका गलत असर पड़ सकता है, और वैसे भी प्रेग्नेंट लेडी को एक खुशनुमा एनवायरनमेंट देने की जरूरत होती है, उन्हें इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस सिचुएशन में सब काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन हम सब तो सिर्फ अरमान भाई के बिहेवियर को लेकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन अरमान भाई के बारे में भी तो सोचिए। उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 2 साल किसी ने ऐसे चुटकियों में उड़ा दिए और उनको एक बार फिर दर्द और गुमनामी की जिंदगी में धकेल दिया। कहीं न कहीं ये कहते हुए आहान की आंखें डबडबाई और उसका गला भराया। तभी सुमित और आकाश ने आहान और ध्रुव दोनों के सर पर हाथ रखा और उन्हें शांत होने के लिए कहने लगे और आंखों ही आंखों में उन्हें इशारा किया कि आहान जाकर रौनक को और ध्रुव वंशिका को संभाले। उसके बाद आकाश और सुमित आस्था के पास चले आए। उन्होंने आस्था के सर पर हाथ रखकर धीरे से उसे आश्वासन दिया, तुम फिक्र मत करो आस्था, हम हैं तुम्हारे साथ, याद रखना तुम्हारे 2 भाई हैं यहाँ पर जो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे, और अरमान को ठीक करने में हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, बस कुछ दिनों की ही बात है। वंशिका ने एंटीडोट पर काम करना शुरू कर दिया है, उसने पूरी डिटेल्स तैयार कर ली हैं। भाई वाली बात सुनकर आस्था की आंखें एक पल के लिए फिर नम हो उठी। आस्था दर्द भरी मुस्कान से, हम तो यहाँ पर खुशी खुशी आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए आए थे, हमने सोचा था कि राखी के शुभ मुहूर्त में सबसे पहले सुमित भैया, आकाश भैया और टाइगर भैया को राखी बांधेंगे, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सब कुछ उल्टा फुलटा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम घर आकर भी घर नहीं आए हैं, सब कुछ हमें पराया सा लग रहा है नानी माँ। ये कहते हुए उसने एक बार फिर नानी माँ को गले से लगा लिया। नानी माँ ने आस्था के बालों पर हाथ फेरते हुए कोमलता से कहा, शांत हो जा बिटिया, शांत हो जा, और वैसे भी अभी राखी का मुहूर्त खत्म नहीं हुआ है, तेरे भाई भी यहीं मौजूद हैं, और भाई साहब ने बताया है कि दामाद जी की आंखें काफी भारी हो रही थीं, इसलिए दामाद जी अभी गहरी नींद में सो रहे हैं।
तभी ध्रुव एकदम से बोल पड़ा, हाँ आस्था भाभी, अभी अरमान भाई 2 से 3 घंटे पहले नहीं उठेंगे, क्योंकि अब मैंने उन्हें फिर से एक ऐसी इंजेक्शन दिया है जो उनके दिमाग की कोशिकाओं को शांत करने में मदद करेंगे, इसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोना होगा, अभी तो वो फिलहाल से 3 घंटे के बाद ही उठेंगे, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, हमने सारी चीज मैनेज कर ली है, फिलहाल वो आपको और घर की किसी भी लड़कियों को इस घर से नहीं निकालेंगे। ये कहते हुए ध्रुव काफी कॉन्फिडेंस लग रहा था। ध्रुव की बातें सुनकर आस्था केवल नम आंखों से ध्रुवों को देखती है तो कभी बारी बारी से सबको देखती है। उसका दिल आज बुरी तरह दर्द में था और वो अपना दर्द अभी किसी को भी बयान नहीं कर पा रही थी। आस्था का दिल पूरी तरह से घबरा रहा था। अचानक से आस्था आगे बढ़ी और उसने अंश को झूले से उठाते हुए अपनी गोद में ले लिया और एक बार फिर अंश को गोद में लेकर आस्था बुरी तरह से रो पड़ी। उस पर आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कहाँ तो वो खुशी खुशी अपने पति को गले से लगाकर अपने दिल की सारी बातें उनसे कहना चाहती थी। ऑस्ट्रेलिया में उसने अपनी फैमिली के साथ कितने मजे किए थे उस बारे में वो अरमान को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर तो उसे एक अलग ही तरह के दुखों ने घेर लिया था। उसके पति का प्यार, उसके जज्बात सब कुछ बदल चुके थे। कहाँ तो वो अपने आप को इस दुनिया के सबसे खुशनसीब लड़की समझा करती थी कि उसका पति उस पर जान छिड़कता है, लेकिन उसे अब उसका पति पराया सा लग रहा था। वहीं अंश को गोद में लेकर आस्था को इस तरह से रोते हुए देखकर हर किसी का दिल तड़प उठा था। आहान जो कि कुछ ज्यादा ही इमोशनल था, वो भी खुद को रोक नहीं पाया और नानी माँ के गले से लगकर वो भी रो पड़ा था, क्योंकि दोनों माँ बेटे को इस तरह से देखना उन लोगों को काफी ज्यादा गहरा दर्द दे गया था। इतना ही नहीं, हमेशा बिना एक्सप्रेशंस में रहने वाले सुमित और आकाश की भी आंखें पूरी तरह से भर आई था। सभी को सिचुएशन की गंभीरता का अच्छी तरह से अंदाजा था। वहीं मिनी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ टाइगर, जो कि इमोशनल लेस चेहरे के साथ ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और साथ ही साथ अपने कमरे से बाहर जाते हुए मारिया को भी चुपके से देख रहा था, जो कि सारी चीज अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन आस्था या किसी को भी फेस करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मारिया खुद इस वक्त अपनी प्रेगनेंसी के मूड स्विंग और अरमान ने जो उसके सर पर बम फोड़ा था उन सब बातों से जूझ रही थी, इसीलिए वो चाहकर भी 2 बोल प्यार के आस्था को बोल नहीं पाई। वहीं टाइगर अब आस्था को तड़पते हुए देखकर टूटा हुआ सा महसूस कर रहा था और तभी उसने अपने उमड़ते हुए जज्बातों को शांत किया और मन ही मन कसम खाई, जिसने भी मेरे किंग और क्वीन की जिंदगी में इतने दुख भरे हैं मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। ये सोचते हुए टाइगर बड़ा ही डेंजर लग रहा था। फिलहाल नानी माँ ने आस्था को शांत करवाया और रौनक को चुपके से इशारा किया कि वो उसे आकर संभाले, लेकिन रौनक खुद उस वक्त रो रही थी, वो उस वक्त आस्था को क्या संभालती। तभी दादाजी आगे आए और आस्था के सर पर हाथ रखकर धीरे से बोले, शांत हो जा बच्चे, हम जानते हैं कि हमारे परिवार पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है अगर हमारा परिवार एक साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करेगा तो सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हमारा हंसता खेलता परिवार एक बार फिर पहले की तरह हो जाएगा। ये कहते हुए दादाजी का गला भी अब पूरी तरह से भर आया था। फिलहाल रश्मि ने आकाश का हाथ थाम कर रखा था, सुमित ने राधिका का और ध्रुव वंशिका को संभाल रहा था, क्योंकि सभी उस वक्त काफी ज्यादा इमोशनली हर्ट हो चुके थे। तब नानी माँ आगे बढ़ी और आस्था को गले से लगाकर और अंश को अपनी गोद में लेते हुए प्यार से बोली, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, तू तो हम सबकी हिम्मत है। आस्था, अगर तू ही इस तरह से टूट जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा बेटा। हाँ, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। देख, अब तू बिल्कुल नहीं रोएंगी, क्योंकि मैं अपनी गोरी की आंखों में अब और आंसू नहीं देख सकती। नानी माँ ने पूरी तरह से भावुक होते हुए आस्था को शांत कराया और फिर आगे बोली, बच्चे, राखी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, इसलिए अब खुद को संभाल और अपने सुमित भाई, आकाश भाई, टाइगर भाई को राखी बांध।